दिन भर तारीख 19 अगस्त दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। रियो ओलंपिक में रजत पक्का करने के बाद भारत को सोना दिलाने के लिए दम लगा रही हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। भारत प्रशासित कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सीआरपीएफ ने अदालत से कहा अगर इसका इस्तेमाल न किया जाए तो प्रदर्शनों में ज्यादा जाने जा सकती हैं।
हम फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हम लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बैठे थे, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ पैलेट गन यूज किए हैं, इसकी दोनों आंखों में पैलेट मल्टीपल इंजरीज है, दोनों की रोशनी चली गई है।
और आज की विवेचना में श्रद्धांजलि साहित्यकार अमृतलाल नागर को।
मैं तो भाई जनता जो यहाँ बोलती है उस बोली का लेखक हूँ, ना हिंदी जानता हूँ ना उर्दू। सच बात, मैं तो पढ़ते पढ़ते कुछ थोड़ी सी भाषा जरूर सीख गया किसी हद तक, लेकिन अधिक नहीं।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। रियो ओलंपिक में आज महिला एकल बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मोरिन से होगा। कल पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हरा दिया था। उत्तरी सीरिया के शहर मनबिज से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस्लामिक स्टेट के लड़ाके आम नागरिकों को सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं। इस शहर के ऊपर से ली गई तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए सीरियन डेमोक्रेटिक सेना या एसडीएफ का कहना था कि इस तस्वीर में सैकड़ों की संख्या में वाहनों का काफिला देखा जा सकता है और ये तस्वीरें शुक्रवार को ली गई थी। अमरीकी समर्थित कुर्द और अरब लड़ाकू के गठबंधन ने वाहनों पर हमला नहीं किया क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए आईएस ने इन वाहनों में आम नागरिकों को बिठाया हुआ था। एसडीएफ के लड़ाकों ने अमरीकी नेतृत्व वाले हवाई हमलों और विशेष सेना बलों के सहयोग से मनबिज पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। ये संघर्ष करीब 10 हफ्ते तक चला था। जर्मनी की गृहमंत्री थॉमस डी मेजियर ने बुर्का पर आंशिक प्रतिबंध लगाने को कहा है। इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि बुर्के पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना शायद संवैधानिक नहीं होगा। जर्मनी के एक टेलीविजन चैनल को डी मेजियर ने कहा कि सरकार उन जगहों पर महिलाओं के लिए अपना चेहरा खुला रखना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना चाहती है जहां सामाजिक मेलजोल की जरूरत हो। इस प्रस्ताव को संसदीय मंजूरी की जरूरत होगी और इसके तहत स्कूल, विश्वविद्यालयों, नर्सरी, सार्वजनिक कार्यालयों में या गाड़ी चलाते समय चेहरा ढकने की मनाही होगी। इधर चेहरा खुला रहने देने वाले बुर्के पर शुरू हुई बहस से चांसलर एंगेला मर्केल के सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद पैदा हो गया है। गृहमंत्री डी मेजियर का कहना था, हम पूरे बुर्के को खारिज करते हैं, केवल बुर्का नहीं बल्कि ऐसा ही बुर्का जिसमें केवल आंखें दिखती हैं। कुल मिलाकर यही हमारा मानना है क्योंकि पूरा बुर्का खुले समाज के लिए सही नहीं है। ये थे गृहमंत्री डी मेजियर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंता जताई है। मंत्रालय का कहना है कि बान की मून का ये पत्र प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उस चिट्ठी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये भी दावा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने पाकिस्तान के सामने विदेश सचिवों के बीच प्रस्तावित वार्ता के लिए 5 सूत्री एजेंडा तय किया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर और मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज रियो ओलंपिक से कर रहे हैं।
बीबीसी ओलंपिक रियो अपडेट।
तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु चांदी जीतने के बाद सोना जीतने की कोशिश कर रही हैं। उनकी टक्कर स्पेन की कैरोलिना मारिन से है। इस समय दोनों खिलाड़ी कोर्ट में पहुंच गई हैं और पीवी सिंधु ने पीले रंग की जर्सी पहनी हुई है। सीधे कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं नॉरिस प्रीतम को। नॉरिस, क्या माहौल है और दर्शकों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं?
मैं देख रहा हूँ कि बैडमिंटन में ये हॉल जो भरा हुआ है और यहाँ पर सबसे मजे की बात ये कि जितने ब्राजील के लोग जो लोकल निवासी हैं वो शायद हमारी संस्कृति एक सी, शक्लें एक सी है, तो सारे जितने ब्राजील के लोग हैं सिंधु को सपोर्ट करने आए हैं। 2 दिन से यही चल रहा है, वो सोच रहे हैं कि दो इंडियन की नहीं बल्कि कोई ब्राजीलियन खेल रही है, और जहां तक मैच का सवाल है तो ये आज मेरा ख्याल है सिंधु के लिए कयामत का दिन है कहना चाहिए और भारत के लिए कयामत का दिन है। और साथ ही ये टेस्ट होगा गोपी के लिए क्योंकि गोपी साइना के कोच थे और साइना उनसे अलग हो गई थी, अगर ये जीत जाती है तो अब देखना पड़ेगा कि साइना का क्या विचार होगा इनके बारे में। हालांकि मैच काफी टफ रहेगा क्योंकि कैरोलिना टॉप सीड है, लेकिन जिस तरह से आक्रमण करके गेम खेल रही है सिंधु उससे लगता है मुझे आज हमें गोल्ड के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो सबकी निगाहें पीवी सिंधु के पदक पर लगी हुई हैं कि किस तरह से आज वो जीतती हैं, हालांकि रजत पदक तो उनका पक्का हो ही गया है। सामने आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश, भारत ने भी बहुत तैयारियां की हैं, हर टीवी चैनल पर इस समय यही मैच प्रसारित हो रहा है।
जी हाँ बिल्कुल, और भारत में अजीब तरह का माहौल है क्योंकि अगर देखा जाए तो थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर था तो दिल्ली की सड़कों पर जो अमूमन ट्रैफिक जाम रहता है आज आश्चर्यजनक रूप से ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, सड़कें सुनसान है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि वीकेंड भी है। और सबसे बड़ी बात मोहनलाल जी की, ये समय भारत को सूट करता है, अगर ये मुकाबला रात के 2 बजे होता तो शायद अध नींद में भारतीय खिलाड़ी होते और अगर भारतीय दर्शक होते, लेकिन इस समय जहाँ से भी वो सुन पा रहे हैं सिंधु के बारे में, सब टेलीविजन सेट पर चिपके हैं, रेडियो के माध्यम से कमेंट्री सुन रहे हैं। और पीवी सिंधु की जो अपनी एकेडमी है जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली थी हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद एकेडमी, वहां वो अपने माता पिता के साथ जहां जाती थी ट्रेनिंग के लिए, आज उनके माता पिता वहां मौजूद हैं और तमाम शिष्य गोपीचंद के वहां पर हॉल में मौजूद हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ऐसा उत्साह तब था जब लंदन ओलंपिक्स के फाइनल में सुशील कुमार कुश्ती के मुकाबला खेल रहे थे।
जी आदेश कुमार गुप्त और नॉरिस प्रीतम, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि पीवी सिंधु का मैच जो कि बस शुरू हो गया है वो आपको कहां आगे ले जाता है। आपको बता दें कि इस समय मैच बस शुरू होने ही वाला, बल्कि हो ही गया है और पुलेला गोपीचंद स्टेडियम में बैठे हैं, इस मैच को भी देख रहे हैं। आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल का विषय क्या होगा।
बीबीसी इंडिया बोल। अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने अकेले जितने पदक जीते उतने भारत 100 साल में नहीं जीत पाया। छोटे छोटे गरीब मुल्कों से निकलते हैं उसैन बोल्ट जैसे खिलाड़ी। भारत में न पैसों की कमी है न खिलाड़ियों में दमखम की। पदक जीतने पर बरसता है पैसा, फिर भी क्यों ओलंपिक की चुनौती में चित्त हो जाता है भारत। इस बार इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 20 अगस्त शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो ये तो चर्चा हुई कल के बीबीसी इंडिया बोल की, लेकिन वापस कार्यक्रम में लौटते हैं और कश्मीर का जिक्र करते हैं। पिछले 42 दिन से भारत प्रशासित कश्मीर में कर्फ्यू जारी है, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला भी जारी है। अलगाववादी आंदोलन पर काबू करने के लिए सुरक्षा बल आंसू गैस के साथ साथ गोलों के साथ साथ पैलेट गन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पैलेट गन से अब तक 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 100 से अधिक लोगों की आंखों में छर्रे लगे हैं। पैलेट गन के इस्तेमाल पर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सीआरपीएफ ने अदालत को बताया कि अगर इसका इस्तेमाल न किया जाए तो प्रदर्शनों को काबू करते वक्त ज़्यादा जाने जा सकती हैं। ताज़ा जानकारी के साथ श्रीनगर में रियाज मसरूर हैं, जहाँ से उन्होंने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
8 जुलाई को पुलिस के ऑपरेशन में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की मृत्यु के बाद छिड़े अलगाववादी आंदोलन पर काबू पाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ पैलेट गन का बेतहाशा प्रयोग कर रहे हैं। अब तक घाटी में 66 लोग मारे गए हैं और 5000 के करीब घायल हैं, लेकिन मानव अधिकार संगठनों में पैलेट गन से हुए नुकसान पर आक्रोश पाया जाता है। स्थानीय अदालत में कल एक याचिका की सुनवाई के दौरान सीआरपीएफ ने बताया कि 8 जुलाई से 11 अगस्त तक 34 दिनों में प्रदर्शनकारियों पर 3000 पैलेट कार्ट्रिजेस फायर किए गए, जिसका मतलब है कि 13.5 लाख पैलेट्स का प्रयोग हुआ है। इसी समय में आंसू गैस के 8,500 गोले भी फायर किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब तक पैलेट से घायल हुए 600 लोगों का ऑपरेशन किया गया, जिनमें से 112 की आंखों में छर्रे यानी पैलेट्स लगे हैं। एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती 2 ऐसे लोगों के परिवार वालों का कहना है कि ऑपरेशन के बावजूद अब वो देख नहीं पाते।
ये दोनों मेरे रिलेटिव्स है, ये मेरा भाई है, ये जो मेरे राइट हैंड साइड में है, ये मेरे कजन है। हम फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हम लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बैठे थे, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ पैलेट गन यूज किए हैं, इसकी दोनों आंखों में पैलेट मल्टीपल इंजरीज है, दोनों की रोशनी चली गई है।
डॉक्टरों का तो यहाँ तक कहना है कि पैलेट गोली से भी खतरनाक है।
बुलेट हैज सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट, इट माइट कॉज एट द मोस्ट सिंगल organ injury. Pellets are basically they have multiple entries and multiple exits.
श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल के सर्जन डॉक्टर जावेद कहते हैं कि गोली से सिर्फ एक सुराख हो जाता है, जबकि पैलेट जिस्म में कई सुराख करता है और ऑपरेशन करते वक्त आंतरिक अंगों में हुए सभी सुराखों का पता नहीं चल पाता, जिससे पीड़ित व्यक्ति मर सकता है। गौरतलब है कि पिछले महीने कश्मीर की यात्रा के दौरान भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पैलेट गन के प्रयोग के बारे में फोर्सेज को खास आदेश दिए गए हैं, लेकिन सीआरपीएफ के प्रवक्ता राजेश यादव का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों को बार बार संयम बरतने के आदेश देने से स्थिति कंट्रोल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
रेगुलर बेसिस में इस तरह की ड्यूटी चलने से एक हरासमेंट फील होती है, एक फ्रस्ट्रेशन आती है, और उसके ऊपर हालात जब ऐसे हो कि आप पत्थर भी झेल रहे हैं, बीच में कोई पेट्रोल बम मार रहा है, देयर आर इंस्टेंसेस की अब ग्रेनेड भी लॉब हो रहे हैं, अब इसके ऊपर रोज ये बार बार ब्रीफ उनको किया जाना कि रेस्ट्रेंट रेस्ट्रेंट रेस्ट्रेंट, संयम दिखाइए, पेशेंस दिखाइए। देखिए, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग।
19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने कश्मीर में शिकार के लिए जिस बंदूक का प्रयोग किया था, वो आजकल घाटी में जारी आंदोलन के विरुद्ध भारतीय अर्धसैनिक बलों का अहम हथियार बन चुका है। छोटी लोहे की गोटियों में बारूद भरकर इस पर प्लास्टिक कवर करके एक पैलेट तैयार होता है और बंदूक की एक कॉटरेज में 450 ऐसी गोटियां होती हैं जो फायर करते वक्त चारों तरफ प्रदर्शनकारियों को घायल कर देती हैं। इस बीच आज 42वें दिन भी घाटी के सभी जिलों में कर्फ्यू रहा, जबकि अलगाववादियों ने भी बंद की कॉल को 25 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सख्त कर्फ्यू के बावजूद बांडीपोरा और बारामूला के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए, जिसके दौरान फोर्सेस की कार्रवाइयों में कई लोग घायल हो गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के ख्रिवशार इलाके में एक कॉलेज टीचर की कथित रूप से सेना की हिरासत में टॉर्चर से हुई मौत पर भी लोग नाराज हैं। सेना के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस के दुआ ने कहा है कि सेना इस मामले की जाँच करेगी। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर, और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि इस समय पीवी सिंधु का मैच चल रहा है, टक्कर उनकी स्पेन की कैरोलिना मारिन से है। हम विवेचना आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आदेश गुप्त से स्कोर पूछ लेते हैं।
जी मोहनलाल जी, स्कोर इस समय 7-3 यानी कैरोलिना मारिन 7-3 से आगे है। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो बॉडी लैंग्वेज में पीवी सिंधु थोड़ा सा नर्वस नजर आ रही हैं, उनकी सर्विस थोड़ी देर पहले आउट हुई थी, इसके अलावा जो उनका शॉट था वो भी साइडलाइन से परे गया था, और कैरोलिन मारिन ने गेम को काफ़ी धीमा रखा क्योंकि उन्हें पता है कि पीवी सिंधु काफ़ी अटैकिंग खेल खेलती हैं, और अगर इस तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त कैरोलिन मारिन ने ले ली तो फिर पहले गेम में सिंधु के लिए मारिन से पार पाना मुश्किल होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम में विवेचना सुनेंगे और विवेचना सुनने के बाद हम फिर से स्कोर के अपडेट पर आएंगे आपके पास। वक्त है आज की विवेचना का। प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य को जिन साहित्यकारों ने संवारा है उसमें अमृतलाल नागर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी गिनती उन साहित्यकारों में होती है जिन्होंने न तो परंपरा को नकारा और न ही आधुनिकता से मुंह तोड़ा। बूंद और समुद्र, मानस और हंस जैसी कालजयी रचनाओं के लेखक अमृतलाल नागर की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
हिंदी साहित्य में यूं तो आत्मकथाएं बहुत लिखी गई हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने अपना खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट कागज पर उतारने की कोशिश की है। एक बानगी देखिए।
मेरे गालों की हड्डियां उभरी हैं जो विद्रोही व्यक्तित्व की सूचक है। नाक नुकीली है, देखकर कोई भी समझदार ये मान जाएगा कि नाक वाला है। होंठ न पतले न मोटे, मुंह छोटा, निचले होंठ पर एक तिल भी है। अनुभवी लोगों से सुना है कि ऐसे तिल वाले को रसीले भोजन, पानों और रसीले होंठों का सुख मिलता है। सब मिलाकर चेहरा बुरा नहीं है, लोगों का ध्यान एक बार तो अपनी ओर खींच लेता है। कुछ औरतें भी इस पर रीत चुकी हैं। तसल्ली है, सबसे बड़ी तसल्ली इस बात की है कि मेरे चेहरे पर इश्क फरमाते रहने का धंधा या लफंगापन अपना साइन बोर्ड कभी नहीं टांग पाया। देखते ही किसी को विश्वास हो जाएगा कि आदमी भला और शरीफ है।
ये हैं अमृतलाल नागर, अपना खुद का पोर्ट्रेट खींचते हुए टुकड़े टुकड़े दास्तान में। उनके मुंह बोले शिष्य मनोहर श्याम जोशी ने अपनी किताब लखनऊ मेरा लखनऊ में लिखा था कि नागर जी की जिस चीज से मैं चकित चमत्कृत रह जाता था वो थी उनकी जिंदा दिली। हमने बात की मशहूर फिल्म कथाकार और अमृतलाल नागर की बेटी अचला नागर से।
वो बहुत खूबसूरत थी, काफी लोग उनको मुस्लिम समझते थे क्योंकि उनकी जबान बहुत अच्छी थी। शुरुआती दिनों में वो अचन भी पहन लेते थे कई बार, और बाद में तो वो सफेद कपड़ों पर आ गए थे। अपने बारे में उन्होंने एक शब्द जितने लिखा है, मैं 20 की मांग निकालता हूँ, और मेरी आंखों की पुतलियों का रंग हल्का भूरा सुनहरा है, मेरी नाक सितुआ है, मुस्कुराहट बड़ी खुशनुमा है। और जब उन्हें क्रोध आता था तो क्रोध ऐसे आता था इतनी जोर का, लेकिन वो बाहर वालों पर नहीं आता था, किसी बात से उनकी क्रिएटिविटी अगर अटक जाती थी या कोई और उसका गलत उसूलन से गलती गलत बात कर रहा होता था जो उन्हें बुरी लगती थी या लेट हो रहा है जैसे घड़ी के पाबंद थे, घड़ी पर नजर देती थी, बहुत सी बातें मन। तो अगर क्रोध आता है वो खुद कहते थे मुझे क्रोध ऐसा आता है, कोई भी विकराल रूप ले सकता है, लेकिन वो ऐसे ही सिर्फ बादल आए घर से बरस के खत्म।
अमृतलाल नागर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था मुंशी प्रेमचंद और शरदचंद चट्टोपाध्याय का। वो उनके दर्शन करने खास तौर से कोलकाता जाते थे। नागर जी के निकट सहयोगी रहे और उनकी कहानियों पर शोध कर चुके प्रोफेसर एसपी दीक्षित बताते हैं।
अपने लेखन के उन्होंने तीन महत्वपूर्ण सूत्र बनाए हैं। एक तो ये है जो सलाह उन्हें प्रेमचंद से मिली थी कि जो लिखो रियलिस्टिक लिखो। दूसरी बात उन्होंने शरद चंद से सीखी थी, जब उनसे इंटरव्यू हुआ था उन्होंने कहा कि पहले फील करो उसके बाद लिखो, गहरे एहसास के आधार पर लिखना चाहिए। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात उनके बाबा राम जी ने कही थी कि अपनी कलम से किसी की निंदा नहीं करना। इन तीनों चीजों का निर्वाह वे आजीवन अपने पूरे लेखन में करते रहे। हालांकि सब जानते हैं कि वे फ्रीलांसर थे, कलमजीवी, और आज के इस युग में पूरे परिवार के साथ कलम के सहारे जीविका चला पाना बहुत कठिन होता है। कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं, बाजार से कुछ रोचक चटपटा मसाला देना पड़ता है जो विचारधारा से भिन्न होता है या स्तरीय लेखन से भिन्न होता है, पर यहाँ भी नागर जी एक विशेष प्रकार का संयम और संतुलन बनाए रहे।
लखनऊ के जनजीवन और बोली का जितना शानदार चित्रण अमृतलाल नागर की रचनाओं में मिलता है उतना शायद कहीं नहीं।
उन्होंने लखनऊ के जनजीवन को ओढ़ा बिछाया, इसको पूरी तरह से जिया, इसके पूरे इतिहास को समझा, पूरी सामाजिक संरचना को समझा और हर वर्ग से निकट संपर्क स्थापित करके तब फिर उसे लेखन में परिणत किया। जैसे बूंद और समुद्र के बारे में लोग कहते हैं कि उसमें चौक की गलियां बोलती हैं, जैसे घरों से वही आवाज आती है, वही संवाद, उसी प्रकार के पात्र। लेकिन एक विशेषता ये देखिए कि किसी भी पात्र को हूबहू जैसा देखा जाता है वैसा चित्रित न करके, ताकि वो वैयक्तिक ना हो, उन्होंने उसी से मिलते जुलते कई पात्रों का एक कॉकटेल बनाया और उन सबको मिला करके एक नए व्यक्तित्व का गठन किया। लखनऊ की भाषा को उन्होंने पूरी तरह से अपनी घुट्टी में पी लिया था, वही बोली बानी, वही लहजे, वही मुहावरे और वही शब्दावली। एक खास तरह की भाषा उन्होंने बनाई थी जिसको मैं मजाक मजाक में नागरी भाषा कहा करता था, जैसे नागरी देवलिपि है देवनागरी, इसी प्रकार की एक भाषा उन्होंने गढ़ी थी और वो भाषा गली मोहल्लों से इकट्ठी की थी। तो ऐसे बहुत सारे पात्र उन्होंने यहाँ के चुने, कोई तांगे वाला है, कोई चाट बनाने वाला है, कोई कादिर मियाँ है, कोई सकीला की माँ है।
तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है ऐ शहरे लखनऊ।
अमृतलाल नागर एक ऐसे लेखक थे जो किसी संकीर्ण मतवाद से प्रतिबद्ध नहीं थे। वो प्रगतिशील साहित्यकारों के बीच भी उतनी सहजता से बैठते थे जितना उनके विरोधियों के बीच। उनके मानवतावाद का उदाहरण देते हुए उनकी बेटी अश्ला नागर कहती हैं।
कहते थे बेटा हमारे यहाँ पूजा होती है, पाठ होती है, सब ठीक है, होता रहेगा, अच्छी बात, जैसा हो वैसा देखो करना, लेकिन बेटा हमारा कोई पूछे क्या धर्म है हमारा, कहना मानवता। एक बार स्कूल के फॉर्म में मेरा मानवता ही कॉलम लिखा हूँ मैंने। वो ये कहते थे कि किसी को वो करो जैसे नमस्कार या कुछ, तो जय हिंद बोलो। जय हिंद से जाति बोध नहीं होता, धर्म बोध नहीं होता। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कुमुद भाई के पत्र में लिखी कि बेटा तुम्हारी नानी तुम्हारा यज्ञ पवित्र करवाना चाहती, और वो भी ठीक है, वो पूरा आयोजन होता है, विधि विधान से होता है, उसमें एक धागे का एक समूह होता है जो पहनाया जाता है मंत्रों के साथ। मैं एक बात और कहता हूँ, एक ऐसा भी जनयु हो सकता है जिसमें कुरान बाइबिल और गीता के तीन धागों को गांठ बांध के और वो गले में पहना दिया जाए, तो मेरी समझ में वो भी एक बहुत सुंदर जनयु है। आप ये बताइए कि जब ऐसी बातें बच्चों को पत्रों से जिन बच्चों को सिखाई गई है वो कैसे बच्ची हो सकती है।
अमृतलाल नागर 1940 में मुंबई गए थे जहां वो 7 साल रहे। इस बीच उन्होंने 18 फिल्मों की पटकथाएं लिखी, डबिंग का काम करने वाले वो पहले लेखक थे। वहां उन्हें कई बड़े लोगों के सानिध्य का मौका मिला। उन दिनों मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत भी मुंबई में पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ रहा करते थे।
शिवाजी पार्क के उस कमरे, तो मुझे बड़ी याद है उस कमरे की, वहाँ वही रहते थे हम। इतने बड़े बड़े सितारे उस कमरे में बैठे हैं, भारत रत्न M.S. सुब्बुलक्ष्मी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे शर्मिला टैगोर के दादाजी अवनींद्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े चित्रकार थे वो। शर्मिला मुझसे कुछ 2.5 साल छोटी होगी मेरे ख्याल से, छोटी सी थी तब, हमारे घर के पास ही रहती थी। अवनींद्रनाथ जी उसका हाथ पकड़ के एक केन का कैप लगाती थी, छोटी सी बच्ची, याद है वो चित्र मुझे। कभी प्रदीप जी, ये सारी हस्तियां, पंडित नरेंद्र शर्मा मेरे चाचा और अनिल विश्वास इतने बड़े संगीत का, दिलीप कुमार, तो इनके पिता की बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थी। इनके संपर्क में पहले भगवती चरण वर्मा चाचा जी के संपर्क में आए, फिर बाबूजी के संपर्क में आए। जब मुझे पहली बार मुझे दिलीप साहेब और उन्हें पता लगा मैं नागर जी की बेटी हूँ, तो बड़ी प्यारी स्माइल, बाबूजी के बाद मुझे दिलीप साहब की स्माइल बहुत मेरे दिल में उतरी हुई है। और जबान उनकी, मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई आप उनकी बिटिया हैं, हम तो उनके हुक्का बरदार थे नागर जी के। वो आए थे, सबको कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहे थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ, उन्होंने तो कि उससे भी उनके बड़े जो लोग थे उनका सानिध्य भी मुझ पे, गोद में खेलने का अवसर मिला, उनका लाड़ प्यार मिला।
मुंबई से वापस आ जाने के बाद भी अमृतलाल नागर का संबंध फिल्मों से छूटा नहीं। लखनऊ के उनके घर में शतरंज के खिलाड़ी और जुनून जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, उनकी पौत्री दीक्षा नागर बताती हैं।
जुनून की शूटिंग हमारे घर में करीब जो है 12-14 दिन चली थी, और जिस हिस्से में हम रहते थे वो जो है एक तरह से मेस था, और बाकी जो दरवाजा बीच का खोलो तो जो मर्दाना हिस्सा था वहाँ पर बहुत से दृश्य मैनेगल साहब ने शूट किए। ये वो घर था जिसमें जेनिफर कपूर और नफीसा अली में उन्होंने पनाह ली थी। मैं इसमें चुकताई की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जब ये शूटिंग शुरू हुई तो जिस दिन ये शुरू हुई है उस दिन मैं स्कूल में थी, और नागर जी के जो सहयोगी हैं चकल्लस के जमाने से, संचित बाबा जिन्हें हम कहते थे, वो हमको स्कूल से लेने आए, बोले कि जो है शूटिंग हो रही है। और जब हम घर में घुसे तो हमको जो चौकीदार रखा गया था शूटिंग वालों ने, वो हमको घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा था। वो कहता कि आप पास लाइए तब हमको आपको अंदर जाने देंगे। तो उसको समझाने में बड़ी दिक्कत हुई, और जब मैं घर में पहुंची हूँ तो मैंने नजारा ही बिल्कुल देखा कि जो है इतनी भीड़, पुराना मकान था, लकड़ी के जीने थे।
एक तरह से वो उपन्यासों के माध्यम से हमारे कई सौ सालों का सामाजिक इतिहास लिख रहे थे।
मैंने पाया कि वे होमवर्क बहुत करते थे। किसी भी ऐतिहासिक कथा को लिखने के पूर्व 50 पुस्तकें पढ़ते थे, उनको एक तरफ से रंग डालते थे, उसे नोट्स बनाते थे। और इससे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ जिस घटना को लिख रहे होते थे वही जाकर वे बस जाते थे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जब वे खंजन नयन लिख रहे थे तो लगभग 2.5-3 महीने मथुरा में, वृंदावन में, पारसौली में, सूरकुटी में वे किराए का कमरा लेकर के रहे। एक बार की घटना, मैंने पूछा बाबूजी इन दिनों क्या चल रहा है, तो ब्रज से लौट करके ही आए थे, बोले डॉक्टर वो अंधा उंगली नहीं पकड़ने दे रहा है। नहीं समझ पाया कि उंगली पकड़ने का क्या मतलब है। उनका तात्पर्य था कि जब तक पात्र भीतर स्पंदित ना हो, वो खुद न बोले, तब तक वो चरित्र जीवित नहीं होता है। तो उससे सीधा साक्षात्कार करना केवल ऐतिहासिक या केवल अतीत की घटना के आधार पर नहीं, वर्तमान में उसको ले आना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी।
1960 में उन्होंने यौन कर्मियों पर एक रिपोर्टाज लिखा, ये कोठे वालियां। उन्होंने सैकड़ों यौन कर्मियों से बात कर ये किताब लिखी जिसकी उस समय बहुत चर्चा हुई।
ये एक प्रकार का रिपोर्टाज है या भेंट वार्ता इंटरव्यू शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें जिस साहस का परिचय उन्होंने दिया, आज के भद्र समाज में किसी का कोठे पर जाना, उनके इंटरव्यू लेना और उनसे बहुत खुलकर बात करना उनके पूरे जीवन व्रत पर, लोकशील की दृष्टि से बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन ये खतरा उन्होंने लिया और एक एक का इतिहास निरूपित करते हुए उसका पूरा समाज शास्त्र प्रस्तुत कर दिया।
वो अपनी कृति बोल कर लिखवाते थे, गांव तकिया दीवार से टिकाते और पीठ गांव तकिए से, फिर धारा प्रवाह बोलते जाते समा बांधने वाले किसी किस्सा गो के अंदाज में। एक बार बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था,
मैं तो भाई जनता जो यहाँ बोलती है उस बोली का लेखक हूँ, ना हिंदी जानता हूँ ना उर्दू। सच बात, मैं तो पढ़ते पढ़ते कुछ थोड़ी सी भाषा जरूर सीख गया किसी हद तक, लेकिन अधिक नहीं। मैं यही कह सकता हूँ, अपने बारे में जानने का मेरा प्रोसेस अभी जारी है। कह नहीं सकता कहाँ पूरा होगा या कोई और पूरा करेगा, फिर भी अभी प्यासा हूँ, बहुत पानी पिया इस दुनिया के अनुभवों के सागर से, लेकिन अभी प्यासा हूँ। अभी ऐसा लगता नहीं, हर बार जब अभी पिछला उपन्यास जब ये नाचो बहुत गोपाल पूरा किया तो यही सोचता था कि बड़ी मेहनत पड़ती है, अपना कर पाऊँगा इतनी। अभी एक महीना डेढ़ महीना से खाली हूँ, तो अब छुट्टी बिताने के बाद फिर उतावला हो रहा है।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
साहित्यकार अमृत लाल नागर, जिन्होंने ना तो किसी परंपरा को नकारा और ना ही आधुनिकता से मुंह मोड़ा, ये विवेचना रेहान फजल की यदि आप सुनना चाहें तो bbchindi.com पर भी ये उपलब्ध है, और सुबह के कार्यक्रम में इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में अब बात एक बार फिर से रियो ओलंपिक की। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस समय एक जबरदस्त मैच भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और स्पेन की कैरोलिना मारिन के बीच में चल रहा है। आदेश कुमार गुप्त लेटेस्ट स्कोर के साथ मौजूद हैं। बताइए किसके पक्ष में मैच जा रहा है?
जी देखिए, किसी के पक्ष में मैच जाएगा या जा सकता है अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट चलती हुई है और इस समय कैरोलिना मारिन और पीवी सिंधु के बीच एक बहुत लंबी रैली चल रही है जो इस गेम की सबसे लंबी रैली है। और इस समय मारिन रिटर्न देते हुए नेट पर जाती हुई पीवी सिंधु और कोर्ट में पीछे जाकर बढ़िया रिटर्न इस समय मारिन का, सिंधु भी लगातार जवाब देती हुई, और यहाँ पर जो अंक है वो पीवी सिंधु को मिला है और 17-16 स्कोर इस समय हो गया। पीवी सिंधु सर्विस करेंगी और यहाँ पर मोहनलाल जी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस गेम में कभी भी पीवी सिंधु ने बढ़त हासिल नहीं की। अब अपनी सर्विस पर उन्हें अंक लेना होगा, स्कोर को बराबर करना होगा और उसके बाद बढ़त लेनी होगी, क्योंकि 21 का स्कोर होते ही पहला गेम समाप्त हो जाएगा। और पीवी सिंधु ने बहुत ही नज़दीकी मुकाबलों में अपने विरोधियों को पराजित करते हुए फाइनल तक जगह बनाई है, और ये मैच बहुत ही समझदारी से दोनों खिलाड़ी खेल रही हैं। दबाव बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर स्पेन की कैरोलिना मारिन की बात की जाए तो वो लाल जर्सी में खेल रही हैं और स्पेन में आप जानती हैं कि किस तरह से बुल फाइट होती है, तो एक खतरे का जो
दोनों खिलाड़ियों के लिए प्रतिष्ठा का आज का मुकाबला है। अगर मैं इसकी तुलना कल के जो मैच खेला गया जिसमें कि जापान की खिलाड़ी को पीवी सिंधु ने टक्कर दी, वो पहला जो गेम था वो 21-19 का था, वो भी बहुत कड़ा मुकाबला था,
वो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था, पूरी पीस पर खेला गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि ओकुहारा जो कि थोड़ा सा चोटिल भी हो गई थी उसका पूरा फायदा उठाया सिंधु ने, और दूसरे गेम में तो कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन आज अगर बात की जाए तो कैरोलिन मारिन काफी फिट नजर आ रही है और उन्होंने काफी हद तक दबाव करने बनाने की जो कोशिश की थी उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन अगर सिंधु की बात की जाए तो उनकी तारीफ करनी होगी जिस तरह का मुकाबला उन्होंने खेला है। हालांकि उनकी जो सर्विस थी कई बार उन्होंने आउट मारे हैं और एक दो बार जजमेंट भी गलत रहा, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में बस तेजी से स्मैश ही मारने हैं या फिर अपना दमखम दिखाना है, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना दमखम बचाकर संयम के साथ शुरुआत की है और मुकाबला बहुत ही
नेक टू नेक कांटे की टक्कर चल रही है।
और इस समय एक अंक गवाया यहां पर सिंधु ने, थोड़ा सा दबाव उनके चेहरे पर नजर आता हुआ,
और वो उतना ही दबाव जो है पुलेला गोपीचंद पर भी नजर आ रहा है। जी आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के बीच चल रहा है। मारिन ने बढ़त बनाई हुई है। उत्तरी सीरिया के शहर मनबिज से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए इस्लामिक स्टेट के लड़ाके आम नागरिकों को सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं। जर्मनी के गृहमंत्री थॉमस डी मिजेयर ने बुर्का पर आंशिक प्रतिबंध लगाने को कहा है। इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि बुर्के पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना शायद संवैधानिक नहीं होगा। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। चौथी सभा घटना चक्र जब लेकर हाजिर होंगे तब तक पीवी सिंधु का मुकाबला समाप्त हो चुका होगा, नतीजा आ चुका होगा। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।